ओम शांति। सभी प्यार से एक साथ मेरी बात कहेंगे, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस ज्ञान सरोवर परिसर में स्पोर्ट्स विंग की कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी स्पोर्ट्स कर्मी भाई बहनों का हमारी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मन की शक्ति के माध्यम से खेलों में सफलता की प्राप्ति अर्थात अचीविंग सक्सेस इन स्पोर्ट्स थ्रू द पावर ऑफ माइंड, इस विषय को लेकर आपका यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ ज्ञान सरोवर में आयोजित हुआ है। कल आपके रिसेप्शन सेशन में माइंड पावर की बहुत सारी बातें आपको बताई गई। मन में कितनी बड़ी शक्ति है, परंतु उस शक्ति को हमने कितना पहचाना है, तो कैसे उस शक्ति को पहचान कर हम उनको कार्यान्वित करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें, उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा साधन है। और जब मेडिटेशन की बातें करते हैं तो कई प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, और योग के नाम पर योगा कह करके भी कई योगा योगाश्रम चारों ओर खुले हुए हैं जहाँ अनेक योगासन सिखाए जाते हैं, और उनको यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शक्तिशाली रखना चाहते हैं, तो पहले शरीर को स्वस्थ रखें, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। इसलिए बॉडी को हेल्दी बनाने लिए कई व्यायाम सिखाते हैं, योगासन सिखाते हैं। परंतु अगर हम WHO का माने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़े तथ्यों से ये साबित किया है कि 80-90% जो शरीर के रोग हैं वो साइकोसोमेटिक है। साइको कम्स बिफोर सोमेटिक। तो पहले हमें साइको को ठीक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली 80-90% जो शरीर के रोग है वो तो आएंगे ही नहीं। 10% कोई और कारणों से शरीर के रोग आते हैं, लेकिन अगर हमने मन को सशक्त कर लिया तो कई रोगों से आप बच जाएंगे। और मन को सशक्त करने के लिए क्या विधि अपनाएं, मेडिटेशन उसके लिए सबसे बड़ी विधि है। तो मेडिटेशन जिसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। आपके अंदर एक परफेक्शन है, बहुत पोटेंशियलिटी है, उस पोटेंशियलिटी को प्रकट करना ये मेडिटेशन है। तो किस प्रकार की पोटेंशियलिटी और किस में है इसको समझना ये मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो राजयोग मेडिटेशन है। वैसे अष्टांग योग में तो आसन नियम, आसन से पहले यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग कहते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है यम नियम पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। क्या जीवन में उसके लिए नियम चाहिए वो तो कोई नहीं बताता, लेकिन आसन और प्राणायाम पर अवश्य ध्यान दिलाते हैं। और फिर प्रत्याहार पर भी मुश्किल से कोई ध्यान देते हैं। विड्रॉल एक बहुत ऊंची स्टेज है मेडिटेशन में, विड्रॉइंग फ्रॉम द आउटर सेंसेस, प्रत्याहार। फिर ध्यान, किसका ध्यान, कौन सी धारणा, और समाधि का क्या मतलब है। अब ये तो बहुत आगे की बातें, लेकिन अगर हम मेडिटेशन को सरल शब्दों में, जिसको हम योग कहते हैं, उसको समझना चाहते हैं तो उसका सरल अर्थ कोई मुश्किल नहीं है। सचमुच देखा जाए योग को योगा कह करके उसका अपभ्रंश कर दिया है पश्चिमी संस्कृति ने। है तो भारत का प्राचीन योग जो भगवान ने सिखाया था, गीता के अंदर आता है, हे अर्जुन मैं तुमको राज योग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। और गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। तो योग का कोई अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है। अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से आया है। संस्कृत में युज शब्द आता है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किसी भी प्रकार के जोड़ को योग कहा जाता है। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, और वियोग का अर्थ होता है अलग होना, दूर जाना, बिछड़ना। तो उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, एक होना। तो इसीलिए जब एक होना है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो एक ए और प्लस किया वो योग शब्द है। ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए को बी से जोड़ा वो सी बन गया। अब ए और बी को समझना होगा इस योग में, फिर सी का मतलब क्या उसको भी समझना होगा। इसीलिए योग का शाब्दिक अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है, परंतु इसको हम तीन लेवल में ले सकते हैं। एक है फिजिकल यूनियन, फिजिकल मीटिंग, जिसमें वस्तुओं को जोड़ते हैं। वस्तुओं को जोड़ने के लिए भी कई रूप है। दो व्यक्ति मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं वो भी योग है, उसको सहयोग कहते हैं। मिलजुल करके किया, सहयोग। दो तारों को हम जोड़ते हैं, हमारे घर में बिजली चाहिए तो पावर हाउस की तार से हम अपने घर की तार जोड़ते हैं, वो भी योग है, पावर हाउस से योग है। फिर दूसरा प्रकार का योग है, कई और भी इसमें हम योग कहला सकते हैं। दूसरा प्रकार का भी योग है, इसको हम कहते हैं मानसिक लेवल का योग। आप किसी व्यक्ति को बहुत याद करते हैं और मान लो वो व्यक्ति उसी समय पहुंच जाता है, आपने याद किया, कोई बात होगी और आपने उसको याद किया और वो पहुंच गया। आप कहेंगे अरे क्या योग था मेरा, मैंने आपको याद किया और आप आ गए। तो मन मन से मिला, वाश फिजिकली वस्तु वस्तु से मिली, वो फिजिकल टाइप ऑफ योग। अब या मन मन से मिला और वो खींचा हुआ चला आया, भाई मुझे भी आपकी बहुत याद आई तो मैं कहूं, मैंने कहा मैं जाऊं। तो मन का मन से मिलन भी एक योग है। परंतु जब हम इसका तीसरा लेवल लेते हैं तो वो तो बहुत ऊंचा लेवल है, और वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये सबसे ऊंचा योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब इस योग को हम राजयोग कहते हैं, सबसे ऊंचा योग, क्योंकि योग और वियोग तो जीवन में पल पल पर अनुभव करते हैं। आप जिस घर से आए या जहां से आए, वहां से वियोग हुआ, यहां से योग हुआ, फिर तीन चार दिन के बाद आप वापस जाएंगे, यहां से वियोग होगा, वहां से योग होगा। तो ये तो योग और वियोग ये जीवन के हर कदम पर हम अनुभव करते हैं। लेकिन जब इस योग का आध्यात्मिक स्तर लेते हैं तो वो तो बहुत ऊंचा योग है। और गीता के अंदर एक एक चैप्टर योग से जुड़ा हुआ है, तब उसको भी हम देखेंगे। तो फिजिकली जब हम योग की बात करते हैं, हम रेडियो ऑन करते हैं और कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो रेडियो स्टेशन से योग होने के लिए हमें वही वेवलेंथ, मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी पर अपनी रेडियो की सुई को सेट करना होता है। ये उसकी विधि है। उस रेडियो स्टेशन से अगर हम आवाज चाहते हैं तो चाहे वो हजारों मील की दूरी पर हो, लेकिन हम अपने रेडियो पर वो आवाज सुन सकते हैं। परंतु वही फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, मीटर बैंड पर अपनी सुई को सेट करना होगा, वो भी एक योग है। दो तारों को मिलाते, पावर हाउस कितना दूर है, पर हमारे पास उस पावर हाउस की तार है या ट्रांसमीटर की या जो भी वो है, तो हम उनसे जोड़ते और हमारे मकान में बिजली आ जाएगी। दूध में हम चीनी मिलाते, ये भी एक योग है, दूध प्लस चीनी का योग। और इसका परिणाम क्या है, जिसका जिसके साथ मिलन हुआ उस चीज का गुण पहले में आ जाता है। दूध में चीनी मिलाई, दूध मीठा हो जाएगा। कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ा, करंट आएगी। रेडियो ऑन किया, रेडियो स्टेशन से योग हो गया, हमको आवाज सुनाई दी। इसी प्रकार मन का योग भी ऐसे ही है। आप कोई ऐसी घटना याद कर रहे हो, बहुत दुखद घटना है, मान लो वेरी ट्रैजिक कल से वो सिचुएशन था, चाहे उसको 10-20 साल भी हो गए, अभी न वो व्यक्ति है, न वो स्थान है, न वो परिस्थिति है, सब कुछ बदल गया ना, क्षण क्षण सब बदलता जाता है। लेकिन आज भी अगर हम उस बात को याद करते हैं तो तुरंत रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अरे बस मत याद कराओ, प्लीज प्लीज याद मत कराओ। वो दुख की लहर आज भी अनुभव होगी, क्योंकि बहुत ट्रैजिक बात थी वो। उसके विपरीत सुख की बातें भी है, कोई ऐसी खुशी का माहौल होगा और वो आज नहीं, कुछ समय पहले बीता था, लेकिन आज भी उस माहौल को आप याद करते हो, आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। कई बार होता भी है, कुछ बात भी थी और एकदम मैं मुस्कुरा देती हूँ, तो लोग हमसे पूछेंगे क्या बात है, आज मुस्कुरा रही हो, क्या बात है, कुछ बात हो तो नहीं रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, अरे कुछ याद आ गया, कुछ याद आ गया। तो वो खुशी की बात याद आ गई तो चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये मन से योग है। तो मन तो बहुत सोचता है, मन की स्पीड इतनी तेज है, हाँ, जिसका हम वर्णन करते हैं कि अगर फिजिकली देखें, जैसे प्रकृति के अंदर कई शक्तियां हैं मैटर में, और उसको हम टैप करते हैं, सोलर एनर्जी बनाते हैं, विंड एनर्जी, ये एनर्जीज है प्रकृति में। अब सूर्य से प्रकाश निकलता है, धरती पर पहुंचता है, 8 मिनट लगते हैं। लाइट ट्रैवल्स, और वो लाइट की जो ट्रैवलिंग है उसकी स्पीड अनुसार कहते भाई 8 मिनट लगते हैं सूर्य और धरती के बीच में जो फासला है उस अनुसार। लेकिन मन से आप सूरज तक पहुंचो, एकदम महसूस करो वो सूरज आग का गोला, आप 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। कितनी देर लगी, देर लगी क्या? तो मन की स्पीड क्या है, मन से तो कहीं भी पहुंच सकते हो आप, यहां बैठे हो, घर चले जाओ, 1 सेकंड में चले जाएंगे। तो ये मन की स्पीड हमको मदद करती है अपना आंतरिक विकास करने में, वो शक्ति बहुत वास्तव में श्रेष्ठ है, लेकिन हमने इस मन की शक्ति को पहचाना नहीं है। पहले जमाने में ना सूरज की शक्ति तो थी, लेकिन पहचाना कहाँ था कि इस शक्ति से हम इतनी बिजली तैयार कर सकते। विंड में इतनी शक्ति है, हम उसको विंड मिल के द्वारा हम उसको टैप करके उससे एनर्जी पैदा कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से पानी की शक्ति से हम टर्बाइन्स चलाएं और बिजली पैदा हो सकती है। कोल से, कोयले से बिजली तैयार हो सकती है, हाइड्रो पावर प्लांट कहीं। तो ये सारी साइंस ने हमें ये बताया है, लेकिन मन को कैसे टैप करके उसको सही दिशा दें ये किसी ने नहीं बताया। बच्चों को हम सिखाते तो हैं कि बच्चे हाँ मैनर्स धारण करो ये नहीं करो, ये अच्छा है ये बुरा है, तो और बातें तो सिखाते हैं क्या करो क्या ना करो, लेकिन क्या सोचो, वो सोचना कितना सिखाते हैं वो तो हम सिखाते नहीं है, क्योंकि हर चीज तो मन से ही शुरू होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव करेंगे, वॉट एवर यू थिंक दैट यू शैल बिकम। इसीलिए मन को अगर हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हम किससे पहले मन कनेक्ट करें। कोई भी हम कोई कार्य करते तो पहले हम भगवान को याद करते, क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनसे अगर मन कनेक्ट हो गया तो इतनी शक्ति हमको मन में आएगी। लेकिन उनसे कैसे कनेक्ट होता है, वो है कौन, क्या संबंध है मेरा उनसे, वो कुछ नहीं पता। मन भी क्या चीज है उसको भी कहां जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले खुद को पहचानो, फिर ईश्वर को पहचानो, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। वो ईश्वर की शक्ति आपको तब अनुभव होगी जब पहले सेल्फ को हम पहचानेंगे। तो हम देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल योगा क्या है। स्पिरिचुअल योग, टू कंसिडर वन सेल्फ टू बी अ सोल, मैं एक आत्मा हूं, एंड कम्युनिकेट विद द सुप्रीम इज कॉल्ड राजयोग, जिसको गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन तुम अपने मन को मेरे में लगाओ तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। मन को मेरे में लगाओ, और अर्जुन की ये शिकायत थी, हे भगवान मन तो लगता नहीं है, मन तो चंचल है, मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है। उसकी तुलना घोड़े से करते हैं, पर घोड़े को लगाम भी तो लगा सकते हैं ना, पर कह दिया नहीं ये तो बेलगाम घोड़ा होके भटकता ही रहता है। तो जब अर्जुन की ये शिकायत थी तो भगवान ने उनको क्या कहा है, अर्जुन दो कदम अपनाओ, ये दो कदमों से आप अपने मन को वश कर सकते हो। मन आपका दुश्मन नहीं है, मन को मारना नहीं है, मन तो आपका सच्चा मित्र है, पर उस मित्र से कैसे व्यवहार करो वो जरूर हमें सीखना होगा। कई समय से बस मन को मारना है, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त चेतनता की जो भी वृत्तियां इन सबको सप्रेस करो, निरोध। हम कहते हैं नहीं निरोध नहीं करो, निरोध आप तो सप्रेस। एक बच्चे को आप, वो चंचल है, उस बच्चे चंचल बच्चे को आप मारते रहेंगे तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मारना थोड़ी होता है, बच्चे को सिखाना होता है। मन भी एक बच्चे की तरह है, उसको सिखाना पड़ता है, माँ बन करके सिखाना है मन को। तो इसीलिए मन को मारना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है, लेकिन मन का अमन हम जरूर चाहते हैं। अमन माने शांति, तो मन का अगर अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मन की शांति, तो मन को सुमन करना पड़ेगा। सुमन, सुंदर मन, सुंदर विचार। आप जैसा विचार मन को देंगे वैसी आपकी स्थिति बनेगी। इट्स सो सिंपल। लेकिन वो हमारे अंदर वो एक कला होनी चाहिए, कैसे मन को हम सुंदर विचार दें। क्योंकि नेगेटिव सोचना बहुत सहज है, बहुत सहज है। इट्स सो इजी टू फॉल, लेकिन टू राइज उसमें शक्ति चाहिए। गिरने में मेहनत नहीं है। अगर आप नहीं भी गिरेंगे पर ध्यान नहीं दिया तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको गिरा सकता है। क्योंकि गिराने की शक्ति तो बहुत है प्रकृति में। जो चीज ऊपर है वो नीचे ही गिरेगी। तो गिरना में, गिरने में ताकत नहीं चाहिए, पर चढ़ने में जरूर ताकत चाहिए। तो मन को दमन नहीं करना है, पर सुमन करना है, सुंदर विचार मन में लाने। और उसकी वही कला है, जैसे चित्रकला होती है। एक बच्चे को आप पेंसिल दे दो, बेटा कुछ लिखो, फिजी करना है, अब वो लकीरें ही खींचेगा और क्या करेगा, अभी उसको तो आता नहीं है। लेकिन एक चित्रकार को आप पेंसिल दे दो, वो कितना सुंदर चित्र बना देगा। है तो वही पेंसिल, लेकिन बच्चे ने तो लकीरें ही केवल खींची और चित्रकार ने तो उसको चित्र बना दिया। वही पेंसिल यूज की, लेकिन वो कला थी जिससे वो चित्र बना सका। इसी प्रकार मन को एक दिशा देना, ये एक बहुत बड़ी कला है। और ये कला हमें मेडिटेशन सिखाता है। तो इसीलिए व्हाट इज योग, इट्स अ कनेक्शन ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम। और उसको हम राजयोग कहते हैं। क्यों राजयोग कहते हैं? क्योंकि इस योग से हम पहले अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं। हम इंद्रियों के राजा बनते हैं। इंद्रियां हमारी सेवक है। हम इन इंद्रियों से जो कर्म करना चाहे हम मालिक बन के करें। हमको यही हाथ है, किसी को आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं इस हाथ से, दुआएं दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। पर यही हाथ है कि इसको थप्पड़ भी मार सकते हैं। अब हाथ तो हमारे पास है, हमारे कंट्रोल में है। और कई बार हम शिकायत भी करते हैं, हम कहते हैं क्या करें, पता नहीं कैसे हाथ चल गया, कैसे थप्पड़ मार दी, मेरे अंदर में कोई भाव तो था नहीं। अब ऐसे थोड़ी थप्पड़ उसको लगी या आपने मारी, जरूर कुछ तो होगा ना अंदर में, इसीलिए तो थप्पड़ मारी, नहीं तो क्यों मारते थप्पड़। तो इसीलिए हमें राजयोग राजा बनाता है। पहले अपने इंद्रियों का राजा, फिर अपने मन का भी राजा। हम क्या सोचें, जो हमें नहीं सोचना चाहिए वो न सोचे। कैन आई पुट अ ब्रेक टू दैट थॉट विच आई डोंट वॉन्ट टू थिंक। गाड़ी में भी ब्रेक होती है, केवल एक्सेलरेटर नहीं होता है। ब्रेक बहुत जरूरी है। किसी चढ़ाई पर चढ़ने लिए पहले ये देखा जाता है ब्रेक ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेक ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, तुरंत एक्सीडेंट। तो इसीलिए ब्रेक भी बहुत जरूरी है। तो मन को भी हम जो नहीं सोचना उसको ब्रेक दे सके। पर कई बार हम कहाँ ब्रेक दे पाते, कहते कैसे भूलूं, कैसे भूलूं, भूलता ही नहीं है। और फिर कई बार कह देते कैसे आपको याद ही नहीं आता, याद ही नहीं आता। तो कोई जो बातें याद करनी चाहिए वो तो याद ही नहीं आती है, और जो बातें भूलनी चाहिए वो भूलती नहीं। अब इसको क्या कहेंगे, मन भी हमारे वश में नहीं है। पर राजयोग से हम मन का भी राजा बन सकते। जो हम सोचना चाहें वही सोचें। और फिर जब हम इतने राजा बन जाते अपने इंद्रियों के, अपने मन के, तो हमारे जो कर्म होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि कोई भी गलत कर्म करने का अगर संकल्प आता है तो तुरंत मन खाता है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। कर्म करना थर्ड स्टेज है। पहले सोचो क्या करना है, फिर इसको समझो, ये करने से मुझे फायदा होगा या लाभ होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा, इस करने से परिणाम क्या होगा, वो भी सोचो, यानी उसको समझो, वो कैसी चीज है, कैसी बात है, उसका अंत क्या होगा, वो भी बुद्धि में आए, फिर वो करो। और अगर आप समझते इसका परिणाम गलत होगा, मत करो, इसलिए सोच समझ कर करो। करना थर्ड स्टेज हो जाती है, लेकिन हम लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं जब गुस्सा आता है, पता चलता है क्या, सोच समझ के बिना कर्म कर लेते हैं, और करने के बाद फिर समझते हैं ये गलत किया, ऐसे नहीं कि समझते नहीं है, और गलत किया ये समझ लिया, अब ये भी पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर सोचते अभी क्या करें, भाई मैं सॉरी करने जाऊं, मैं ये करने जाऊं, ये कुछ कैसे, हाउ टू मेंड इट, अब हो तो गया, तीर निकल तो गया कमान से, लेकिन वापस तो अभी आएगा नहीं, तो उसको कैसे मेंड करो। तो इसीलिए ये उल्टी गाड़ी चलती है, इसीलिए कहा जाता है, फिर जब हम श्रेष्ठ, जब हम सचमुच मन के राजा, इंद्रियों के राजा बनते हैं, तो फिर सबका दिल भी जीत सकते हैं। अगर गलत बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, अनशन बोल दिया, किसका मन दुखा लिया, उनका दिल थोड़ी जीत सकेंगे, बिल्कुल नहीं जीत सकेंगे। इसीलिए कई बार कहा जाता है ना कि IQ से ऊंचा है EQ, जो इमोशनल क्वोशंट शुड बी वेरी हाई। आपका इंटेलिजेंट, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, दुनिया भर का ज्ञान हो आपके पास, यू कैन बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, नो डाउट, बट हाउ आर यू द मास्टर ऑफ एटलीस्ट वन ट्रेड, उसमें वो तो है नहीं, और बस बहुत खाली ये समाचार, इतनी इंफॉर्मेशन आज टेक्नोलॉजी में आ गई है, बात मत पूछो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, पर टू मच इंफॉर्मेशन, जिसकी जरूरत भी नहीं है हमको, पर IQ से ज्यादा EQ है। हाउ आर योर इमोशंस, हाउ आर यू एबल टू हैंडल एवरी सिचुएशन, और EQ स्ट्रांग हमारा तब होगा जब हमारा MQ स्ट्रांग हो, मॉरल क्वेश्चन स्ट्रांग हो, और मॉरल क्वेश्चन स्ट्रांग तब होगा जब SQ स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन हम यहां सिखाते हैं, जिसके आधार से मॉरल क्वेश्चन स्ट्रांग होगा, जिसके आधार से आपका इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी उसकी बहुत जरूरत होती है। तो इसीलिए, और जब आपका सबका दिल जीत लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सारे विश्व को जीत सकते हो, सारे विश्व को। कोई भी व्यक्ति बाहुबल से, युद्ध के बल से, हिंसा के बल से, अत्याचार के बल से दुनिया को नहीं जीत सका है, परंतु प्यार से सबके दिलों को जीत सका है, और उनको सरेंडर करा सकता है प्यार से। तो क्या क्या है वो योग, राज योग जिसको हम कहते हैं, इट इज अ लिंक ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल, इट इज अ सुप्रीम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगास। हाउ, क्योंकि सबसे पहले जो ऊंचे से ऊंचा है उसके साथ योग है, हाईएस्ट ऑन हाई, जिसके ऊपर कोई नहीं, जिसके लिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उसके साथ मन की तार है, जुड़ती है। और फिर जो तरीका है, मेथड है, वो भी सबसे ऊंचा है, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए कई मेथड्स होते हैं। आप माउंट आबू आए तो आप पहाड़ों पर चढ़ करके भी आ सकते थे, है रास्ते कई, तो कई रास्ते हैं पहाड़ों पर चढ़ करके माउंट आबू आने का, लेकिन ये रोड बन गया है तो कौन कहे सोचेगा इतने पहाड़ चढ़ करके मैं आऊं। कोई माउंटेनियरिंग सीखते हैं तो वो अलग बात है, यहाँ है माउंटेनियरिंग स्कूल, पहाड़ चढ़ाते हैं, लेकिन अब जल्दी पहुंचना है तो ऑटोमेटिकली आप गाड़ी या कार लेकर के आ जाएंगे, आधे पौने घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर आ जाएंगे, और माउंटेन सारा नीचे से ऊपर तक आप चढ़ो कितने घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए राजयोग वो सहज योग है, सहज मार्ग है. बिकॉज वी आर बिजी पीपल, तो बिजी लोगों के लिए इजी चाहिए. तो इसीलिए इट इज द हाइएस्ट मेथड एंड द इजीएस्ट मेथड, द बेस्ट मेथड एंड द सेफेस्ट मेथड, अगर आप कहें परमात्मा मिलन का. और तीसरा, द अचीवमेंट्स आर ऑल्सो द हाइएस्ट, क्योंकि सक्सेस चाहते हैं ना आप. तो सक्सेस जो हम चाहते हैं, तो कौन सी सक्सेस चाहते हैं? केवल धन कमाना ही सक्सेस नहीं है, केवल स्वास्थ्य कमाना ही सक्सेस नहीं है, संबंधों को भी हमें उसमें भी सक्सेसफुल होना होगा. संबंध भी हमारे अच्छे बने, समाज की सेवा भी हम कर सके. इसलिए हम चार प्रकार का सुख कहते हैं. सुख, हम सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं. सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं है तो जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, उस धन पदार्थ का भी कोई वैल्यू नहीं है. तो चार प्रकार का सुख माना जाता है, तन का सुख, मन का सुख, संबंधों का सुख, और चौथा है जन का सुख, समाज में भी हमारा अच्छा नाम हो, संबंध भी हमारे रिलेशनशिप भी सबसे अच्छे हो, मन भी शांत हो और तन भी निरोगी हो. ये चारों चाहिए, तब हम सदा सुखी बन सकते हैं, और वो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है. तो इसलिए इट गिव्स द हाईएस्ट अटेनमेंट. अब हाईएस्ट अटेनमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने एटीट्यूड्स और रेस्पॉन्सेस टू लाइफ को बदलना पड़ेगा. सो राजयोगा एनेबल्स अस टू क्रिएट न्यू एटीट्यूड्स एंड रेस्पॉन्सेस टू लाइफ, अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेल्फ एंड गॉड रियलाइजेशन. तो राजयोग में हम अष्ट अंग बताते हैं, द एट आर्म्स ऑफ राजयोग. राजयोग राजा है, पर वो योग ज्ञान के आधार पर है. ज्ञान भगवान ने यही सिखाया, ज्ञान दिया, गीता में ज्ञान है. तो ये ज्ञान के आधार पर है. कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, ज्ञान को ये रूप कहते हैं. फिर जब ये ज्ञान मिलता है तो बहुत सहज हो जाता है आत्मा का परमात्मा से योग होना. और जब इतना सहज हो जाता है तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन जाती है. बुद्धि से हम अपने मन को दिशा दे सकते हैं और मन को ईश्वर में लगा सकते हैं. तो जब अर्जुन ने कहा कि मन तो बहुत चंचल है, बहुत पापी है, तो भगवान ने कहा दो कदम है मन को वश करने के लिए. पहला कदम बताया वैराग, वैराग, वैराग से मन को वश में किया जा सकता है. बहुत अटैचमेंट्स है सब जगह, तो वो लक्ष्य तक आप कैसे पहुंच सकेंगे? अब आपको दौड़ना है, आपको लक्ष्य मिला है, आप यहां वहां देखते रहेंगे तो कैसे आप फर्स्ट आ सकेंगे? दौड़ने के लिए आपको आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, बस गो स्ट्रेट. तो इसीलिए वैराग चाहिए और बातों से. अगर आपको कोई भी कार्य में सफलता लानी है, परीक्षा देनी है, आप फिल्म देखने जाएंगे, होटलों में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पास थोड़े हो सकेंगे. परीक्षा माना केवल कॉन्सेंट्रेशन टू माई स्टडी, दैट्स ऑल. इसीलिए वैराग चाहिए. अगर आप सचमुच अपने जीवन में सफलता चाहते हो, एक लक्ष्य आपने पकड़ा है तो. और दूसरा बता अभ्यास, क्योंकि बिना अभ्यास के तो कुछ भी नहीं होगा. कोई भी अचीवमेंट के लिए बाकी बातों से वैराग और उस कार्य में अभ्यास, ये दो अगर है तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है. बस ये समझना है. तो इसीलिए बुद्धि मन को दिशा दे और मन इंद्रियों को दिशा दे. और यही इसी के आधार से फिर कर्म योग है. सफलता का सोच उस समय नहीं करना है, मुझे क्या सफलता मिलेगी जो मैं ये करूं, नहीं। कर्म योग का सिद्धांत क्या है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, पर फल ईश्वर पर छोड़ दो। अब आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आपको फर्स्ट प्राइज लेनी थी पर नहीं, सेकेंड ही मिली, गोल्ड मेडल नहीं मिला, सिल्वर मेडल ही मिला या ब्रॉन्ज मेडल मिला, आप निराश हो जाएंगे। आप तो निराश नहीं होना है, आप मेहनत करो, मेहनत करो, और जो फल मिले वो अगर फर्स्ट प्राइज मिले, श्रेय तो भगवान को दो ना, उनकी शक्ति मुझे मिली जिससे मैं फर्स्ट प्राइज जीत सका। अगर नहीं मिला, ब्रॉन्ज मिला, चलो नहीं भी मिला कुछ, तो भी दुखी नहीं होते, हमने पुरुषार्थ तो किया ना, हम तो निराश नहीं होना। यू कैन ट्राई अगेन, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। इसीलिए राजयोग हमें कर्म योग सिखाता है, कर्म करो, फल की इच्छा उस समय मत करो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। और अगर सफलता मिली तो अभिमान भी मत लाओ, हाँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, नहीं नहीं, ये ईश्वर की शक्ति थी, गॉड हेल्प मी, ईश्वर की शक्ति थी, हमने हिम्मत रखी, भगवान की मदद थी। डोंट फॉरगेट दैट सुप्रीम पावर। और फिर अगर असफलता मिली तो भी दुख नहीं, दुख क्या है, ये तो स्पोर्ट्स पाना, इट्स अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हर वक्त थोड़ी सफलता मिलती है, कभी फेल, हारते हैं कभी जीतेंगे, हार और जीत ये तो स्पोर्ट्स की एक पद्धति है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल विन ऑल द टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल लूज ऑल्सो ऑल द टाइम। तो खेल माना खेल, यू प्ले फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट विनिंग। सम प्ले फॉर द सेक ऑफ लूजिंग, होता है ऐसे भी होता है क्रिकेट में, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं ये हारेगा ये जीतेगा, हारेगा तो जीतेगा तो 1 करोड़ मिलेगा, हारेगा तो 10 करोड़ मिलेगा, है ना, गेम फिक्सिंग। कितनी बहुत बुरी चीज है ये गेम फिक्सिंग। वो शक्ति तो उस समय भाई मुझे हारना ही है, तो हर प्रकार से हारने की कोशिश करेंगे, और अगर वो एक बार ऐसे किया फिर वही संस्कार बन जाएगा, तो जीतेंगे कब। तो इसीलिए कर्म योग, और जब कर्म योग है तो उसमें भक्ति योग है, ईश्वर से सच्चा प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास पूरा चाहिए, वो भक्ति योग है। और जहां भक्ति योग है वहां संन्यास योग है, बुराइयों का संन्यास बहुत जरूरी है। अब कोई शराबी होगा, शराब पी करके स्पोर्ट्स खेले, कहाँ खेल पाएगा, his mind has to be very clear if he wants to win। और जहां ये संन्यास है, बुरी आदतों का संन्यास, बुरी बातों का संन्यास, तो ऑटोमेटिकली समत्व योग हो जाता है, योगा बैलेंस समत्व, और वही समाधि है, यू आर जस्ट लॉस्ट इन इट। तो जब हम इसको योग समझते हैं तो इससे हमारी कितनी कितने फायदे होते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं ना, कैसे हमारा सब डिसीशन पावर शार्पन होगा, बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होगा, पर्सनालिटी बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी, और शांति मिलेगी, हमारे पाप नाश होंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, और फिर आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद, इट इज द हाईएस्ट स्टेज जिसको हम ब्लिस कहते हैं, तो उसकी अनुभूति होगी। अब कई कहते हैं, आप बहन जी आप कहते हो वैराग, तो वैराग अभी थोड़ी होगा, अभी तो हम जवान है, अभी तो खाओ पियो मौज करो, वैराग क्या। हम कहते हैं वैराग का मतलब ये नहीं है, कई कहते हैं हम तो जब बूढ़े होंगे ना तभी ये सब वैराग संन्यास ये सब हम सोचेंगे, अभी थोड़ी करना है। तो हमारे लिए नहीं है ये मेडिटेशन ये सब, लेकिन एवरी वन इन दिस वर्ल्ड कैन प्रैक्टिस राजयोग, नो मैटर ऑफ हिज व्हाट हिज बैकग्राउंड इज, मैं तो इस मुस्लिम हूँ, मैं ये योग वोग नहीं कर रहा, तो हिंदुओं के लिए, तो गीता में मेरे धर्म में ये नहीं है, हाँ मेरे धर्म में ये नहीं है, ये धर्म की बात ही नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारणा, जीवन की धारणा, वो तो सभी का अधिकार है। तो न एज इसमें कोई बैरियर है, न रिलीजन इसमें कोई बैरियर है, कोई बैरियर नहीं। इट्स एन आर्ट, एक कला है, जीवन कैसे जीना होता है वो एक कला है, वो हमें राजयोग सिखाता है, जीवन जीने की कला है। इसमें केवल इस कला में क्या करना है, यू हैव टू मेक अ चॉइस टू लिसन टू योर इनर वॉइस, अंतर आत्मा की आवाज सुनो। हम उसको दबा देते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। तो इसीलिए राजयोग में हमें पहले ये समझना होगा, योगी कौन है, हु इज अ योगी। वास्तव में देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप को योगी समझते हो? जो समझते हम योगी है, हाथ उठाएं, कोई नहीं है हा? अच्छा, जो दो चार बाकी योगी नहीं हो, आप सब योगी हो, ऑल ऑफ यू आर योगीज। हाउ? क्योंकि किसी न किसी के साथ तो योग है ना आपका, अभी भी चल रहा है योग आपका। कोई घर याद कर रहा है, कोई दफ्तर याद कर रहा है, कोई या कल जो आप कुछ दिन के बाद आपका टूर्नामेंट होगा वो याद कर रहा है, कुछ न कुछ, या यहाँ की बातें याद देख रहे हो, तो योगी तो हो ही ना कि नहीं हो? कुछ तो मन में आ रहा है ना याद, तो कुछ तो जो मन में आ रहा है उसके साथ योग तो है ना कि नहीं है? अब बताओ, अब हाथ उठाओ, कौन हो? हाँ देखो, सब योगी है, सब योगी है। पर आपको राजयोगी बनना है, योगी तो हो, तो राजयोगी बनना है। तो कौन है योगी, पहले ये भी तो समझना होगा, तभी तो राजयोगी बनेंगे। कौन है योगी? तो जब हम पूछते हैं आप कौन हैं, हु आर यू, ये प्रश्न सदियों से चलता आ रहा है। इवन ग्रेटेस्ट ऑफ फिलोसोफर्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, उन्होंने ये क्या, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, डोंट आई नो माई सेल्फ। आप कहेंगे हाँ मैं तो जानता हूं, पर इज दैट वॉट यू रियली आर, वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? कितने हम जवाब दे देंगे, जब आपसे पूछेंगे हु आर यू, आप अपना धर्म बताएंगे, जाति बताएंगे, चलो व्यवसाय बताएंगे, या देश बताएंगे, भाषा बताएंगे, पर इज दैट रियली यू? दुनिया की नजरों में आप क्या हो, भगवान की नजरों में आप क्या हो, अपनी नजरों में आप क्या हो, हर एक की नजर में अलग अलग हो सकते हो ना। लेकिन हम वो हैं जो भगवान की नजरों में भी है, दुनिया की नजरों में भी है, खुद की नजर में भी है। वी आर नॉट चेंजिंग। कैसे? आप वो हैं जो आप इस जीवन से पहले भी थे, इस जीवन के बाद भी होंगे, बिकॉज दिस इज अ जर्नी, ये जीवन एक पड़ाव है केवल इस जर्नी का। तो आप कौन है जो इस शरीर के पहले भी थे, इस शरीर के बाद भी होंगे? अब चलो जाति धर्म बता दिया, फिर हम कहेंगे वो आप नहीं हो, तो कौन हो? फिर कोई कहेगा बस मैं तो मनुष्य हूं ना, मनुष्य हूं। चलो धर्म जाति नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो बदलता रहता है। आप कहेंगे मनुष्य हूं, पर मनुष्य को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन और बीइंग ये दो शब्द है, और ह्यूमन शब्द कहां से निकला है? ह्यूमस से। ह्यूमस माना सॉइल, धरती, मिट्टी। तो ये शरीर क्या है? ये मिट्टी है, पांच तत्वों का पुतला कहते हैं, हड्डी मांस का पिंजरा कहते हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पांच तत्वों में विलीन हो गई। तो जिन पांच तत्वों से ये शरीर आया है, उनको इन पांच तत्वों में वापस मिलना है। इसलिए अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे दफनाते हैं, चाहे जलाते हैं, क्योंकि पांच तत्वों को वापस ये शरीर देना है। जहां से ये शरीर आया है। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहते हैं, भगवान के घर से आई है, भगवान के पास गई। तो शरीर का सोर्स ये पांच तत्व है, पर आत्मा कहां से आई है, ईश्वर से आई है। तो मैं कौन हूं, ये पांच तत्वों का पुतला हूं या मैं वो आत्मा हूं जो ईश्वर के घर से आई है? क्योंकि हम यही कहते हैं ना, हम भगवान के घर से आए हैं, हम को भगवान के पास जाना है। ये ईश्वर का प्यारा हो गया, इनकी देह तो शांत हो गई। जब कोई मरता है क्या कहते हैं, इनकी देह शांत हो गई। तो देह की शांति हमें नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट डेथ, आई वॉन्ट इटर्नल पीस, पीस। तो वो शरीर की शांति तो मृत्यु हो गई, पर फिर भी क्या कहेंगे, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। आत्मा की याद किसके मरने के बाद ही आती है, क्यों, वो तो जीवन में भी तो थी ना आत्मा, तभी तो जिंदा था। तो शरीर माना, मनुष्य माना केवल ये हड्डी मांस का पिंजरा नहीं, पर उसमें चेतनता है, और वो चेतनता चली गई तो डेड बॉडी हो गया। तो मैं कौन हूं, मैं वो ये शरीर हूं या वो चेतन शक्ति हूं? अब उसको पहचानना माना खुद को पहचानना, क्योंकि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग चीज है, आई कांट मिक्स देम अप। शरीर एक गाड़ी की तरह है, ड्राइव, और आत्मा ड्राइवर की तरह है। हाउ कैन वी से दिस इट्स अ सेम थिंग? ड्राइवर तो अलग है ना कार से, एक डिब्बी है और उसमें हीरा है। हम ऐसे थोड़ी कहेंगे ये डिब्बी हो या हीरा हो एक ही बात है, नहीं, हीरे का दाम अलग होता है, डिब्बी का दाम अलग होगा। या कोई झोपड़ी है परंतु अंधेरा हो, तो उसमें लाइट हो तब तो उस झोपड़ी का भी तो फायदा है ना, अंधेरे में क्या करेंगे। तो हट भी हो और उसमें लैंप भी हो, एक मंदिर हो पर उसमें मूर्ति ना हो, वो मंदिर केवल चार दीवारें ही होगी, मूर्ति भी तो चाहिए। फिर एक रथ हो पर रथी ना हो, एक वस्त्र हो, बहुत सुंदर वस्त्र है लेकिन पहनने वाला कोई नहीं हो। तो शरीर को तो वस्त्र कहा जाता है ना, ये जन्म मरण क्या है, आत्मा तो न जन्मती है न मरती है, परंतु एक शरीर धारण करती है तो उसको जन्म कहते हैं, शरीर त्यागती है तो उसको मृत्यु कहते हैं, पर आत्मा थोड़ी मरती है। तो मैं तो वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, और शरीर और आत्मा में कितना अंतर है। शरीर तो विनाशी है, शरीर तो परिवर्तनशील है, बच्चा जवान बूढ़ा बनता जाएगा, फर्क पड़ता जाएगा आयु अनुसार, चेहरे पर पता चलता है इसकी आयु कितनी होगी। तो ये तो परिवर्तनशील है, ये तो विनाशी है, ये तो टेम्पररी है, ये तो नॉन कॉन्शियसनेस है, जड़ है ना, फिर भी कहेंगे जड़ है। भले प्रकृति की अपनी चेतनता है वो अलग चीज है, लेकिन आत्मा की जो चेतनता है उसको अभी समझना है। और फिर ये चेंजिंग इमेज है, आत्मा तो अनचेंजिंग इमेज है। अब उसको समझना ये खुद को पहचानना है। तो जब हम कहते हैं आप कौन हैं, तो कई स्वीकार करते हैं, अच्छा आत्मा है शरीर में, आत्मा निकल गई तो शरीर तो डेड बॉडी हो गया। परंतु जब हम पूछते हैं आप कौन हैं, तो फिर क्या जवाब अलग अलग मिलते हैं। कोई कहते हैं हाँ आत्मा है, आई हैव अ सोल इन मी। अब सोचना इस वाक्य को, आई हैव अ सोल इन मी, माना मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ सोल इन माई बॉडी, माना मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। तो प्रश्न है मैं कौन, फिर भी वही आएगा, मेरे शरीर में मेरी आत्मा, तो मैं कौन, दोनों मेरा हो गया ना। तो मैं और मेरे में तो बहुत अंतर है, ये मेरा है पर ये मैं तो नहीं हूं ना। और तीसरा वाक्य है आई एम अ सोल इन माई बॉडी, सो विच इज द राइट स्टेटमेंट। Which is the right statement? First, second, या third? Third. I am a soul in my body. चलो हम अगर मान भी लिया I am a soul in my body, अब वो soul क्या चीज है? आत्मा दिखाई तो देती नहीं है. कई कहते हैं कि आत्मा दिखाई नहीं देती, हम माने क्यों? ये जो अगर लॉजिक देते हैं ना, तो ये बिल्कुल गलत है. दुनिया में कितनी चीजें हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, फिर भी स्वीकार तो करना पड़ेगा ना. ये आवाज है, आप देख सकते हैं क्या? खाली सुन सकते हैं? देख तो नहीं सकते ना, क्योंकि एनर्जी है, स्थूल चीज नहीं है. और ये आंखें चर्म चक्षु है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति की चीज है ये. तो प्रकृति की चीज तो प्रकृति को ही देखेगी ना. जो प्रकृति से परे है उसको कैसे ये आंखें देख सकेगी? एनर्जी को कैसे ये आंखें देख सकेगी? और प्रकृति में भी सब चीजें नहीं देख सकती आंखें. आपको कुछ उसके लिए साधन चाहिए. एकदम माइन्यूट से माइन्यूट कोई तो कैसे देखेंगे? बैक्टीरिया, ये वायरस, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए, दूर की चीजें देखने लिए. अब ये आंखें से नहीं पता चलेगा, तो साधन चाहिए. तो इन आंखों से मैं आत्मा को नहीं देखूं तो मानो क्यों? कोई ऐसे अगर लॉजिक करे तो गलत है लॉजिक. कई बार आंखों से देखी हुई चीज भी बात गलत होती है, कानों से सुनी हुई भी गलत होती है, बात तो कुछ और ही होती है. इसीलिए आईज आर नॉट एवरीथिंग कि मैं देखूं तब मानूं. यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स. और उसके लिए आत्मा की पहचान भी कौन दे सकता है? परमात्मा ही दे सकता है. हम इतने बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, हम बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं. ऐसे नहीं, बॉडी नहीं है, शरीर का तो महत्व है, लेकिन शरीर सब कुछ नहीं है. डेड बॉडी से आप क्या करवा सकेंगे? डेड बॉडी से कुछ करेगा क्या? उसमें चेतनता चाहिए. तो आत्मा क्या चीज है, फिर उसको समझना है. आत्मा एक चेतन सत्ता है. चेतन किसको कहते हैं? चैतन्य कहते हैं ना. चैतन्य अर्थात जिसमें सोचने की शक्ति हो, फिर उसको समझने की शक्ति हो, फिर उसको करने की शक्ति हो, फिर वो जो किया उसको रिटेन करने की शक्ति हो, ये इसको हम आत्मा कहते हैं. जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सब कॉन्शियसनेस. ये सब कॉन्शियसनेस भी बहुत बड़ी चीज है, इसकी बहुत स्टडी होती है. सब कॉन्शियसनेस क्या है? और आध्यात्मिकता की भाषा में हम इनको और शब्द देते हैं. जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? ये बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया, भाग्य लेकर के आया. जब मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं? ये अपना कर्म लेकर के गया. जो जीवन में कर्म किए वो कर्म लेकर के गया. अब वो कर्म तो शरीर द्वारा ही किए थे, तो वो कौन लेके गया? आत्मा लेके गई कर्म. अब कैसे लेके गई आत्मा? फिर बच्चा भाग्य लेकर आया, तो भाग्य कैसे लाया? वही कर्म फिर भाग्य बन जाते हैं आगे के जन्म के लिए. तो वो कौन सी चीज गई जो लेके गई, कौन सी चीज आई जो लेके आई? अब उसको हम कहते हैं संस्कार. संस्कार जिसको ही सब कॉन्शियसनेस कहा जाता है. तो आत्मा माना तीन शक्तियां, ये प्राकृतिक नहीं है. एक शक्ति है सोचने की शक्ति, जिसको हम मन कहते हैं. मन प्राकृतिक नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. मन पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं है, ब्रेन भी सब कुछ नहीं है. इस ब्रेन को चलाने वाली भी शक्ति आत्मा है. जैसे कंप्यूटर इज नॉट एवरीथिंग, मदरबोर्ड हो और ये सब हार्ड डिस्क हो, सब कुछ हो, ये सब कुछ हो, लेकिन बिजली ना हो तो वो आपका कंप्यूटर कैसे चलेगा? या बैटरी ना हो तो कैसे चलेगा आपका कंप्यूटर? तो इसीलिए बिजली भी जरूरी है, एनर्जी जरूर चाहिए. तो शरीर के अंदर ब्रेन एक वो मस्तिष्क जो है वो आपका बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, नो डाउट, बट हु इज वर्किंग दैट कंप्यूटर? वो तो एक चेतन शक्ति है ना, इसलिए उसको हम मन कहते हैं। फिर दूसरी शक्ति है बुद्धि, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं। द बिग डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस इज लाइक द ग्रे मैटर इन योर ब्रेन, आपकी मेमोरी पावर जो ब्रेन में है, नो डाउट वो भी अपना स्थान लेती है, लेकिन हु इज मेमोराइजिंग, हु इज रिमेम्बरिंग? और फिर जो कर्म करते वो आत्मा लेके गई कर्म, वो संस्कार जैसे एक सीडी के अंदर रिकॉर्ड हो गया, वो आत्मा फिर ले गई, फिर उसको चाहिए सीडी को, कंप्यूटर चाहिए, पेन ड्राइव को भी, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तब जो उसके अंदर एम्बेडेड है वो आप देख सकेंगे। अब इसको हम कहते हैं आत्मा, ये फैकल्टीज है आत्मा की। अब मन क्या है? इट इज द ग्रेटेस्ट बट लीस्ट अंडरस्टूड एनर्जी रिसोर्स ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए जितनी भी कंपनीज होते हैं उसमें HRD होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? द ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इज योर माइंड। एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड एंड हार्नेस दिस एनर्जी, देन वी कैन मास्टर आवर लाइफ। ये समझ लो, ये है मन। तो इसीलिए मन माना हमारी थिंकिंग कैपेसिटी, हमारी फीलिंग्स, हमारी एक्सपीरियंसेस, हमारा इमेजिनेशन, हम जो आइडियाज बनाते हैं या फॉर्म क्रिएट करते हैं अंदर ही अंदर, वो मन एक आंख का काम करती है जो दूर तक देख सकती है, जो ये आंखें नहीं देख सकती है। माइंड इज द माइंड्स आई कहते हैं। लेकिन मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार के, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। यू कांट डू एवरीथिंग, वॉट एवर यू थिंक, यू हैव टू डिसाइड। तो बुद्धि, सोच समझ, तो बुद्धि क्या है? ये भी आत्मा की शक्ति है। बुद्धि माना इवैल्यूएशन करना, रीजनिंग करना, डिसर्न करना, उसको पहचानना, समझना, फिर निर्णय लेना, और फिर एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये बुद्धि डिसाइड करती है। इसलिए बुद्धि की तुलना एक छन्नी से कर सकते हैं। आपको चाय छाननी है तो चाय पत्ती तो ऊपर ही रह जाएगी ना, ऐसे नहीं कि चाय पत्ती भी इसमें आ जाएगी तो वो छन्नी किस काम की? छन्नी माना वो चाय पत्ती नहीं जानी चाहिए चाय में। यू आर डिसाइडिंग वॉट टू टेक इन एंड वॉट टू नॉट टेक इन। या दूसरी कंपैरिजन हम बुद्धि से करते हैं, जिसको हम स्केल कहते हैं, तराजू कहते हैं, न्याय, न्याय की देवी दिखाते हैं, उसके हाथ में तराजू है, आंखों पर पट्टी है, माना अनबाइस्ड होनी चाहिए, बाइस्ड नहीं है, हाँ पक्षपात नहीं है, न्याय की देवी। तो न्याय कैसे मिल सकता है? ये तराजू में तीन चीजें होती है, एक कांटा होता है जो ऊपर की ओर होता है, और डंडी होती है जो सीधी हॉरिजॉन्टल होती है, और फिर पलड़े होते हैं। तो नीडल इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मन की एकाग्रता, एंड द रॉड इज ऑफ अनबायस्ड एटीट्यूड। ये नहीं इसने मुझे पैसा दिया है, धन दिया है, तो मैं इसी के फेवर में बोलूंगा क्योंकि इनसे मुझे कुछ मिला है, और इससे मुझे कुछ नहीं मिला है तो मैं इनके विरुद्ध करूंगा। अनबायस होना चाहिए, दैट इज रियल जस्टिस। और तीसरा, द वेट ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। जीवन में अगर वैल्यूज हैं तो जीवन का भी वैल्यू है, ये समझ लो। अगर जीवन में वैल्यूज नहीं है तो जीवन का भी वैल्यू नहीं है। इसलिए तराजू में एक तरफ वजन होता है तो दूसरी तरफ वो चीज होगी, वो वजन ही बताएगी तराजू। तो किसको हम जीवन में वजन दें? आई हैव टू गिव वैल्यू टू माई वैल्यूज, तब कहेंगे कि हाँ सही डिसीशन लिया। और ये जब हमको जीवन में हम मेडिटेशन से अनुभव करते हैं तो जो भी हमारे कर्म होंगे वो संस्कार बन जाएंगे, हमारी आदतें। इसीलिए कहा जाता है वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस फॉर दे विल बिकम योर हैबिट्स, एंड वॉच योर हैबिट्स फॉर दैट विल बिकम योर पर्सनैलिटी, एंड वॉच योर पर्सनैलिटी इनर पर्सनैलिटी बिकॉज दैट विल बिकम योर डेस्टिनी, आपका भाग्य निर्धारित करेगा। यू हैव टू गो टू योर थॉट्स फर्स्ट। सो वॉट आर संस्कार्स, दे आर योर हैबिट्स, योर टेंडेंसीज, योर मेमोरीज, योर टैलेंट्स, योर क्वालिटीज, योर सबकॉन्शियसनेस, इसको हम संस्कार कहते हैं। वो आत्मा ले जाती अपने साथ फॉर द फ्यूचर। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे भाग्य लाया, तो कई बार ट्विंस पैदा होते हैं लेकिन दोनों बच्चों के संस्कार अलग अलग होते हैं। है ट्विंस, एक ही माँ से के पेट से निकले हुए, लेकिन एक बच्चा इतना शांत होगा, दूसरा बच्चा चंचल होगा, संस्कारों में अंतर होगा। माँ बताती ये जो मेरा बेटा इतना शांत है बहन जी, वो तंग कुछ भी कभी तंग नहीं करता, पर ये बेटा मेरे नाक में दम कर देता है, कहते हैं। क्योंकि आत्मा अलग अलग है ना, ट्विंस बने लेकिन संस्कार तो हर एक की अपने अपने है ना, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, तो ये इसको हम कहते हैं आत्मा। तो आत्मा संस्कार ले गई और उसके कितने प्रूफ है, कई छोटे छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं बात मत पूछो, बचपन से इतना सुंदर गीत गाते हैं, माँ बाप को आवाज ठीक नहीं है पर बच्चे इतने टैलेंटेड, कई बार तो माँ बाप से भी मिलता ही है आवाज, लेकिन बच्चे इतने टैलेंटेड कितना अच्छा गीत गाते हैं, माँ बाप को तो कुछ भी नहीं आता है। हाँ, बच्चे कंप्यूटर, माँ बाप को तो कुछ भी नहीं आता और बच्चे इतने होशियार, तो ये टैलेंट कहाँ से आया, ये माँ बाप से नहीं मिला, ये आत्मा का पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म का जिसको उसने अनुभव किया। दूसरा, आत्मा को हम कैसे प्रूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। किसी का ऑपरेशन, थिएटर में ऑपरेशन हो रहा है और अचानक हार्ट बीट बंद हो जाती है, ऑपरेशन होते होते, और फिर उसको लगता है कि ये खत्म, लेकिन नहीं, वो आत्मा ऊपर से अपने शरीर को देखती है क्योंकि बाद में वो जागृत हो जाती है, वो ऊपर से अपने शरीर को देखती है, देखती भी है जबकि आंखें तो बॉडी में है, फिर डॉक्टर्स आपस में क्या बात करें वो सुनती भी है जबकि कान तो शरीर में है, और उसके फैमिली मेंबर्स बाहर बैठे होंगे ऑपरेशन थिएटर के, उनसे मिलकर के आती है, उनको कहेगी मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, और वो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, डॉक्टर समझते पता नहीं मर गया या क्या, और फिर थोड़ी समय के बाद जाग जाते हैं और फिर अपना अनुभव सुनाते, मैं ऊपर से देख रहा था, ऊपर से कौन देख रहा था, कौन सुन रहा था, कौन अनुभव कर रहा था, वो है आत्मा। कई बार फ्यूचर हमें दिखाई देता है, हाउ डू आई नो माई द फ्यूचर, कैसे, ज्योतिषी फ्यूचर ही बताते हैं, कोई बताते, मानो इस समथिंग टू अंडरस्टैंड कि ये सब आत्मा के अंदर संस्कार है। और तीसरी बात है जिसको हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR, दिस इज अ वेरी फेमस वर्ड, आजकल मेडिकल साइंस में इसका बहुत यूज हो रहा है, गोइंग इन टू पास्ट लाइव्स। जो मेडिसिन से क्योर नहीं होगा वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जा करके क्योर करते हैं। समझो किसी पूर्व जन्म में वो सिपाही था, वो सोल्जर था, और उसको गोली लगी यहाँ और बहुत खून का रिसाव हुआ, क्योंकि ये अनुभव किसने सुनाया है, तो खून का रिसाव, उसको इतना पेन, इतना पेन, इतना पेन, जो बात मत पूछो, और उसमें उसकी डेथ हो गई। मानो अब उस आत्मा ने जन्म तो लिया लेकिन जन्म से पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द, दर्द। डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन ये दर्द, दर्द, दर्द। तो उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले गए और उसमें अनुभव किया कि इसको किस गोली लगी थी पास्ट लाइफ में। वो जो एक्सपीरियंस था ना पेन का, वो आत्मा लेकर के आई नेक्स्ट जन्म में और उसको अनुभव किया। रोता ही रहता, रोता ही रहता था बचपन से, जैसे कि और कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले गए, उसको उसी समय से डिलीट किया। डिलीट भी कर लेते हैं, हाँ ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और सचमुच वो दर्द खत्म हो गया और फिर तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इसको हम कहते हैं आत्मा की पहचान, नोइंग योर सेल्फ, हु एम आई, आई एम समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी। अब आत्मा कहाँ है शरीर में, अब इसका भी हमें अनुभव होना चाहिए, तभी तो हम सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। अब ये जो भृकुटि स्थान है, ये आत्मा का, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं या तीसरा नेत्र कहते हैं, द थर्ड आई ऑफ विजडम, यहाँ दिखाते हैं, ये आत्मा की शक्ति है। हाँ कहते हैं यहाँ, तो यहाँ माना वो आत्मा की शक्ति, चेतन सत्ता, जो इस शरीर की इंद्रियों का मालिक है। जैसे ड्राइवर का स्थान कहाँ होगा, जहाँ वो सारे गाड़ी के सब यंत्र है, जिसको वहीं बैठ करके चला सकता है। रिमोट, ये भी रिमोट है ना, इनसे चला सकते हैं। कंट्रोल रूम होता है किसी कंपनी का, फैक्ट्री का, कंट्रोल रूम से ही सारी मशीनें चलती है। अब इस शरीर रूपी मशीन का भी कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल रूम कहाँ है, यहाँ। हाथ पैर कट जाते तो भी जिंदा है, पर सिर ही कट जाए तो खत्म। तो मैं आत्मा रथी इस शरीर रूपी रथ में या भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ, दो भवों के बीच में ये तीसरा नेत्र दिखाते हैं, और यही मुझ आत्मा का स्थान है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। जो हठ योग करते हैं ना, बहुत सारा फिजिकल आसन करते हैं, तो वो बहुत आसन करने के बाद तो फिर लास्ट में शवासन करते हैं। इट्स अ डेथ पोस्चर, आप बॉडी को शिथिल बनाते हैं, मैं ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और लास्ट में यहाँ आते हैं, दे कम हियर। और राजयोग में वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं आत्मा, जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठा और चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गई, मैं आत्मा यहाँ इस शरीर की इंद्रियों का मालिक, भ्रकुटि के मध्य विराजमान, इस शरीर की इंद्रियों को मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया, मैं जो चाहूँ इंद्रियों से कर्म करूँ, नहीं चाहूँ नहीं करूँ, ये मेरी सेवक है, मेरे वश में है। सो आई बिकम द मास्टर, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, नहीं देखना है नहीं देखूँ, I don't have to forcefully see something, not necessary. I don't want to listen, don't listen. It's up to you. Hearing and listening, फर्क है ना? Hearing आवाजें तो बहुत आती है, but you are not listening. इसलिए वो यह is not being focused inside. अंदर उसको ले नहीं रहे। कई बार होता है, हम बहुत कोई बात सोचते हैं और कोई व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है और मैं कुछ और बात में बिजी हूँ, सोच रही हूँ, अब वो बात कर रहा है, मैं हाँ हाँ भी कर रही हूँ, उसको देख भी रही हूँ, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो रहा है अंदर। फिर वो कहेगा कि बहन जी मैंने जो बताया आपने सुना, आप कहेंगे सॉरी भाई मैं कुछ और सोच रहा था। तो रजिस्टर हुआ ही नहीं अंदर, तो भले देख भी रहे सुन भी रहे तो भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो ये इंद्रियां तो केवल साधन है, पर सारी शक्ति अंदर मन की है, और उसी मन को हमने पहचान लिया, आत्मा को पहचान लिया, तो अपने आप को पहचान लिया। अब जो हम जीवन में चाहते हैं वो सब मेरे पास है, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ आउट योर पोटेंशियलिटी। ड्रॉइंग आउट, यू विदड्रॉ भी कर सकते हैं और ड्रॉ आउट भी कर सकते हैं। ज्ञान हमको बाहर से नहीं मिलता है, ज्ञान अंदर से मिलता है। एक बच्चे को सिखाया नहीं जाता है सच बोलो, वो तो सच बोलता ही है। हाँ, झूठ जरूर बोलना सिखाया जाता है, बेटा ऐसे नहीं बोलना ऐसे बोलना, पर सच तो वो उसके वो इनबॉर्न है, क्योंकि वो आत्मा की शक्ति है। इसीलिए मन खाता है अगर हम कुछ गलत सोचते हैं। तो आत्मा वास्तव में अपने ओरिजिनल स्वरूप में बहुत ही शक्तिशाली है, सारे वैल्यूज है उसके अंदर ही है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर मिलेगा सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। अब अंदर जाओ माना क्या, शांति अंदर है, पर शांति भी कैसे अनुभव होगी, ज्ञान है, ज्ञान के आधार से। तो नॉलेज आत्मा के बारे में, और मैं आत्मा हूं, आप सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो मेरे मन में सबके लिए पवित्र विचार है, तो प्यूरिटी ऑफ माइंड ये नॉलेज से हमको आती है, जो अंदर से ही आती है। और जहां प्यूरिटी ऑफ थॉट्स है वहां ही पीस है। शांति क्या है, ये मन की शुद्धि है। अगर मन में शुद्ध विचार है, शुभ विचार है, श्रेष्ठ विचार है, वही शांति है। शांति केवल शून्यता नहीं है, शून्यता शांति है ही नहीं। पीस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ थॉट्स, पीस इज अ ग्रेट पावर इन माई थॉट्स। दैट्स माई द रियल मीनिंग ऑफ पीस। और वो कहां से आएगी, जब हम ये अनुभव करेंगे कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा मूल स्वभाव ही शांति है। पीस इज माई ट्रू नेचर, मुझे शांति बाहर से नहीं लेनी है, ये मेरा ही निजी स्वभाव है, वही धर्म है। धर्म माना धारणा। तो इफ यू वॉन्ट एक्सपीरियंस पीस, गो विद इन। इसीलिए का विड्रॉल, विड्रॉल माना जस्ट ड्रॉ विद इन एंड यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम द आउटर एक्सटर्नल अफेयर। इसीलिए एक कछुए का मिसाल दिया जाता है, कछुआ। शिव के मंदिरों में कछुआ जरूर दिखाते हैं, क्योंकि कछुए के अंदर एक शक्ति होती है। जब उसको चलना होगा चलता है, हाथ पैर सिर निकालता है, और जब नहीं चलना है तो विड्रॉल, ही टेक्स हिज लिम्स विद इन। सबसे जास्ती आयु अगर कोई जीव जीता है वो है कछुआ। कछुए की आयु बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक 500 साल का कछुआ भी मैंने देखा है। मैं वियतनाम गई थी, वहां उसकी तो पूजा होती थी, 500 साल का तो वो था, क्योंकि उसका अंदर का जो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसलिए हार्ट इतना स्ट्रांग है जो 500 साल तक वो जीव जीता है। और मच्छर देखो, पैदा हुआ 40 घंटा भी नहीं जीता है, मर गया, उनकी उतनी आयु है। कुत्ते की आयु दूसरी पर थोड़ी कम है, 10-12 साल, पर मनुष्य की आयु 100 साल तो कम से कम दिखाते बताते। पर अगर स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है, उसका असर तो पड़ेगा ना हार्ट पर, तो आयु आजकल कितनी कम हो गई है। तो इसीलिए जहां नॉलेज है उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो प्यूरिटी है। प्यूरिटी से पीस, पीस से लव, और लव से हैप्पीनेस, और फिर ब्लिस। और वही है हमारा विल पावर, ये सब गुण आने से। और इसी को हम कहते हैं आत्मा की शक्ति। और जब ये मूल गुण है, इसका बहुत विस्तार है, वो हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये जब अपने अंदर अनुभव करते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं। और उसी को हमने कहा ओम शांति। कल वे एक स्पीकर सुना रहे थे ओम शांति का। तो ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ और म। तो अ उ म माना मैं वही हूं, मैं हूं वो, I am that, a uma. You go within. You are withdrawing from the external and going within. Om. You are ओम करके म तक जाता है या गोइंग विद इन, और फिर शांति, तो मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है, वही हूं। और फिर जैसे मैंने पहचाना मैं आत्मा हूं और मेरा स्वभाव शांति है, तो ओम शांति के अंतर्गत मैं आत्मा अपने आप को बहुत शांति में अनुभव कर सकती हूं। ओम शांति ये केवल मंत्र जपने लिए नहीं है, लेकिन ये वो मंत्र का स्वरूप बनने के लिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर दूसरी बार भी हम ओम शांति कहते हैं, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और दूसरा मेरा जो धाम है ना वो शांति का धाम है, इट्स द अबोड ऑफ पीस, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। एक्चुअली ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, यही कहते हैं ना, हम दो दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के पास जाना है। फिर कहते हैं ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब एक्टर्स हैं, तो रंगमंच पर एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, पर वो रंगमंच स्टेज वो तो उनका घर नहीं होता है ना, घर तो कहीं और होता है। तो हम भी इस दुनिया के अंदर आए हैं, कहां से आए हैं, इसीलिए गीत भी गाते, कहां तेरी मंजिल कहां है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहां तुझको जाना। आत्मा ही मुसाफिर है, इस दुनिया में आए हैं, पर कहां है हमारा घर। परमात्मा को त्रिलोकी नाथ कहते हैं, तीन लोकों का नाथ, तो ये साकारी दुनिया है, फिर आकारी दुनिया है, और फिर निराकारी दुनिया भी है। ये पंच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से भी पार एक महत तत्व है, जिनको ये आंखें नहीं देख सकती है, जिसको हम आत्माओं का लोक कहते हैं, आत्माओं की दुनिया है, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है। गीता में भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया है, जहां सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है। तो आत्माओं का धाम भी वही धाम है जिसको हम कई नामों से याद करते हैं, ब्रह्मलोक या मूल वतन, शांति धाम, परलोक, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। महात्मा बुद्ध के लिए कहेंगे पार निर्वाण गया, कोई संत महात्मा शरीर छोड़ते तो क्या कहते, ब्रह्मलीन हो गया। वो ब्रह्म महतत्व है, जो छठा महतत्व है, सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व है, जो आत्माओं का धाम है। और ये वो धाम वो उल्टी झाड़ की तरह है, इस सृष्टि को भी कहते हैं उल्टा झाड़ है जिसका बीज ऊपर है। गीता में आता ऊर्ध्व मूल अधशाखा, जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे है, ये रचना नीचे है, रचयिता ऊपर, इसलिए ऊपर वाला जाने। छोड़ भी दे आकाश से घास रे, धरती पर आ जा रे, भगवान को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो आत्माओं का भी वही लोक है जो परमात्मा का लोक है, कल उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आत्मा की सही पहचान माना क्या, किसी की पहचान कैसे दी जाती है, परिचय पत्र भरते ना, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, या वो फॉर्म भरते इंट्रोडक्शन का, तो आत्मा का भी नाम है, स्पिरिट को, सोल को, उसकी पूजा भी होती है, सालीग्राम के नाम से पूजा होती है आत्मा की। और आत्मा का स्वरूप क्या है, इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप जिसको कहते हैं। फिर कहेंगे कि उसके गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, जो सात गुण बताए, जैसे सात रंग होते हैं, सात दिन होते हैं, सात सुर होते हैं, ये सात गुण आत्मा के, इन सात गुणों में सब गुण आ जाते हैं। जो भी गुण या वैल्यू की बात करेंगे, ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये सेवन कोर वैल्यूज है आत्मा के, जो आपके अंदर है। इन वैल्यूज को जब हम आगे और प्रैक्टिस करते हैं तो वो टैलेंट्स बन जाते हैं। हाँ, वो कई हमारी जो भी हम अनुभूतियां करते हैं वो सब इनसे ही करते हैं। और फिर आत्मा के दो एड्रेस है, एक तो शरीर और उसमें भी ये एड्रेस है, भृकुटि के मध्य विराजमान एक चमकता सितारा, और दूसरी है परमानेंट एड्रेस। तो टेम्पररी एड्रेस भी होती है, परमानेंट एड्रेस भी होती है। तो आत्मा की परमानेंट एड्रेस, हम जहां से आए हैं इस सृष्टि पर, वो शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम। और क्यों आए, ऑक्यूपेशन क्या है इस संसार में आने का? ऑक्यूपेशन हमारा है इस सृष्टि रंग मंच पर आकर एक्टर की भांति एक्टिंग करना। अब उस एक्टिंग में कई प्रकार की एक्टिंग है, जिसमें स्पोर्ट्स की भी एक एक्टिंग है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो इस एक्टिंग के अंदर और महसूस करो कि ये तो एक खेल है, संसार एक खेल है, इस खेल में बस खेलना है, इसमें दुखी नहीं होना है। वी हैव कम फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, नॉट फॉर फाइटिंग। बस खेलो ना, लड़ते क्यों? और खेलोगे तो खुशी सुखी रहोगे। फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हार या जीत यू डोंट हैव टू वरी, बस आप खेलो और अच्छे से अच्छा खेलो, प्ले योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू गॉड। सो व्हाट इज मेडिटेशन? इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। सो मैनिफेस्ट दिस परफेक्शन इन यू, उस ज्ञान को, पवित्रता को, शांति को, प्रेम को, सुख को, आनंद को, शक्ति को प्रकट करो अपने कर्मों में, थ्रू स्मृति, थ्रू एन अवेयरनेस दैट आई एम दैट, आई एम दैट, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये जैसे ही आपने सोचा, शांति आपके पास है। इट्स ओनली वन थॉट अवे। हाउ फार अवे इज पीस फ्रॉम यू? जस्ट वन थॉट अवे, एंड दैट थॉट इज ओम शांति। I am that peaceful soul. So I start my meditation with these positive affirmations which I give to myself. How? मैं कौन? अपने आप को कहो तो अंदर से जवाब आए, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं, मैं आत्मा परम धाम का वासी हूं, इस सृष्टि पर मेहमान हूं, ये देह तो एक वस्त्र है, इनसे मैं आत्मा न्यारी हूं। अब मन बुद्धि से चले जाओ उस धाम में और महसूस करो अखंड ज्योति का महतत्व, जिसमें मैं आत्मा एक सितारा चमक रहा हूं। एंड यू विल फील सो पीसफुल। फिर कल आपको बताएंगे किन से संबंध जोड़ना है, परमात्मा से। तो चलिए अभी हम इसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे 5 मिनट के लिए, और महसूस करेंगे कि मैं आत्मा कैसे इस देह से न्यारी हूं। ये लाल प्रकाश हमें प्रेरणा देता है कि अपने आप को उसी धाम में महसूस करो, एंड स्टॉप, ब्रेक to any thoughts of this world. Just withdraw from the senses, withdraw from the outer surroundings and become aware of the self as a soul. Chaliye seedha baithenge. Man ko ekdam shant rakhe. स्थिर बैठेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, मैं कौन हूं, खुद को ही उत्तर देंगे, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा एक दिव्य ज्योति हूं। महसूस करें अपने आप को एक ज्योति, प्रकाश की लव, एक चमकता हुआ सितारा हूं, बहुत सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूं। इस शरीर के अंदर भ्रकुटी में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर को चलाने वाली चेतना हूं। आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, पर मैं आंख और कान से परे अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। ये शरीर एक वस्त्र के समान है। जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर अभिनय कर रही हूं। मुझ आत्मा ने अनेक शरीर रूपी वस्त्र धारण किए, अनेक नाम और रूप अपनाए, अनेक अभिनय किए, अब इन सब से न्यारा होना है। I withdraw myself from everywhere. एक चमकता हुआ सितारा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं। एक दिव्य शक्ति हूं, मेरा मूल वतन पांच तत्वों से पार, आवास की दुनिया से दूर, प्रकृति की हलचल से बहुत परे, शांति का धाम है। सुनहरा लाल प्रकाश इस महत्तत्व में विराजमान है। चारों ओर असीम शांति ही शांति है। और मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूं। खो जाइए इस मूल स्थिति में, मैं शांत स्वरूप। अति शुद्ध और पवित्र हूं। हल्की हूं, न्यारी और प्यारी हूं। एक दिव्य शक्ति हो। अब इसी संकल्प में खो जाइए, एकदम शांत। और शांति की शक्ति से भरपूर हो जाइए। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा स्वयं को पहचान चुकी हूं। अब इसी स्थिति में अनुभव कर वापस लौटे, फिर से अपने शरीर में, भ्रकुटी के मध्य में, और कर्म इंद्रियों से कर्म करें, पर एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, दिव्य शांति के साथ। तो हर कर्म शक्तिशाली होगा, श्रेष्ठ होगा। सार्थक होगा, सुंदर होगा। और सफलता की अनुभूति होगी। ओम शांति शांति शांति।